Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Mohan Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
आप ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, तो यही आत्मा जो चेतन ही अनेक रूप से दिखता है, हो गया कि नहीं? फिर आत्मा चेतन से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है पदार्थ। इसी प्रकार जागृत में भी ऐसा है, लेकिन ज्ञान इतना जल्दी नहीं हो पाता है, बहुत कठिन है। तो शरीर में अहमता के कारण तमाम प्रकार के रूपादि विषयों को यही भोग करता रहता है। तो ये बता दिया, और ये जितने भी विषय है, ये विषय कैसे आने वाले जाने वाले हैं, आने जाने वाले हैं, विषय होते हैं, नाम भी आता है जाता है, रूप भी आता है जाता है, लेकिन ये जो अधिष्ठान जो तत्व है, घटादि में जो मिट्टी तत्व है, अलंकारों में जो सुवर्ण तत्व है, उसी प्रकार ये संसार में जितने भी नाम और रूप है, कार्य संसार, ये सब आने वाले जाने वाले हैं। सृष्टि से पहले जगत नहीं था, लेकिन सदैव सम्य इदम अग्रे आसीत्, सद ब्रह्म था। अब प्रलय काल में भी संसार नहीं रहता है, लेकिन आत्मा है, अधिष्ठान रहता है। तो अधिष्ठान कहीं आने वाला जाने वाला नहीं, और कल्पित पदार्थ जो संसार जो है, आने वाला जाने वाला। इसलिए जो आने जाने वाले हैं, इसको तुम आने वाले जाने वाले समझो और तितिक्षा करो। तुम आने जाने वाले न हो, हे अर्जुन, आगमा पाइनो नित्यान तान तितिक्षस्व भारत। इस प्रकार जब भावना करेंगे तब तितिक्षा आएगी व्यवहार काल में, है ना? तो तितिक्षा के बिना कोई धीर नहीं बन सकता है। इसलिए जो आत्मा है, यच्चास्य संततो भावः, आत्मा का जो भाव है, आत्मा की सत्ता सर्वदा रहती है। तीनों काल में देखो, सृष्टि से पहले भी है, और स्थिति काल में भी है, और प्रलय काल में भी है। और जिसकी सत्ता पहले नहीं और आगे भी नहीं, और वर्तमान में दिखेगा तो बस प्रातीतिक होगा वो, है ना? प्रातिभाषिक होगा उसको, उसी का नाम क्या है? प्रातिभाषिक है, है ना? तो आदावंते यन्नास्ति वर्तमान आपि तत्तथा, जो पहले ना हो और बाद में ना हो, और वर्तमान में जो दिखता है वो तो प्रातिभाषिक है। इसलिए प्रातिभाषिक जो होता है भाई, ये मध्यम अधिकारी के लिए है। इसलिए वेदांत में भी अनेक प्रकार की चर्चाएं होती है, ये अधिकारी भेद से होती, अधिकारी भेद से। सबके लिए समान उपदेश नहीं किया जाता है भाई। आप विचार कर देख लो भाई, स्वप्न पदार्थ भले ही मिथ्या हो, आप कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म एवं आप बोलते हैं, है ना भाई? स्वप्न पदार्थ मिथ्या है, चलो ठीक है, मान लिया, है ना? लेकिन जागृत में जो खा रहे पी रहे है, ये भी मिथ्या है, तो हमारी बुद्धि जल्दी नहीं जसती है, नहीं जसती है ना? इसलिए शास्त्र कहता है, ठीक है, तुमको जब तक तो ज्ञान नहीं हो रहा है, इसको तुम क्या मान लो? व्यवहारिक मान लो, व्यवहारिक रस्सी को व्यवहारिक मान लो, और सर्पो को प्रातिभाषिक मान लो। तो ये कौन सा अधिकारी के लिए भाई? मध्यम क्या? मंद अधिकारी, है ना? तीन सत्ता होगी ना, है? सपना की सत्ता, रस्सी की, ये सर्प की सत्ता ही क्या हो गई? प्रातिभाषिक होगी, प्रातिभाषिक होगी, मिथ्या हो गया ना भाई? लेकिन जागृत का पदार्थ ये है, व्यवहारिक है, व्यवहारिक बुद्धि नहीं मान रही कि नहीं, ये भी ये कैसे मिथ्या होगा। हाँ, रसगुल्ला जो भी खाना हो तो खरीदना पड़ता है, नहीं तो बनाना पड़ता है ना, तो इसको कैसे मिथ्या मानेंगे। चलो ठीक है, व्यवहार मान लो, इसको व्यवहारिक मान लो, ये मंद अधिकारी हो गया, दो सत्ता हो गए ना, हाँ, सपना की सत्ता हो गई प्रतिभासी, जागरण में खा रहे पी रहे हैं, ये हो गई व्यवहारिक हो गई। और दोनों का जो अधिष्ठान है परमात्मा वो कैसा है, तो तीन सत्ता हो गई कि नहीं, तीन सत्ता हो गई है ना। लेकिन विचार किया, देखो सपनों में जैसा दिखता है ना, जागृत में वैसा ही दिख रहा है, और क्या है। तो सपनों का लड्डू खाते हैं वहां पर भी सुख मिलता है कि नहीं, तो जागृत का जो लड्डू खाते हैं यहां पर भी सुख मिलता है, दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, हो गया कि नहीं। इस प्रकार जब विचार करेंगे, देखो विचार करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी प्रातिभाषिक हो जाएगा, ये सपना पदार्थ ही प्रातिभाषिक, जागृत ही प्रातिभाषिक हो जाएगा। ये सबके लिए नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है ये, है ना। तो ये हो गया मंद अधिकारी, अभी भी ज्ञान हुआ कहां, मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान हुआ नहीं अभी तक, है ना। दो सत्ता हो गए देखो, है ना, सपना अरे जागृत, दोनों कैसे हो गए, दोनों मिथ्या हो गए, देखो दोनों कल्पित हो गए, ये भी कल्पित है ये भी कल्पित, ये मंद ये मध्यम अधिकारी हो गया। ब्रह्म है पारमार्थिक, और ब्रह्म से अतिरिक्त जितने भी है ना, ये सब प्रातिभाषिक हो गए, ये हो गया मध्यम मध्यम, है ना। इसको जो है दृष्टि सृष्टिवाद बोलते हैं, दृष्टि सृष्टिवाद, ये मध्यम अधिकारी के लिए दृष्टि सृष्टिवाद है, और मंद अधिकारी के लिए सृष्टि दृष्टिवाद है, हो गया ना भाई। लेकिन जो उत्तम अधिकारी होता है उसी के लिए क्या है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, बस ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, बस जो भी दिखाई दे रहा है ब्रह्म ही अनेक रूप से दिखाई देता है, हो गया कि नहीं। इसलिए ज्ञानी जो है नित्य मुक्त है ना, इसलिए ज्ञानी को जो ज्ञान होता है आत्यंतिक निवृत्ति का ज्ञान होता है, आत्यंतिक निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति का ज्ञान एक ज्ञानी को होता है ना। सर्प ना रस्सी, ना रस्सी में जो सर्प दिखाई अभी दे रहा है, ना पहले था ना अभी है ना आगे है रहेगा, हो गया कि नहीं। इस प्रकार का ज्ञान जो हो गया, कर्म करते हुए भी वो क्या है, मुक्त है, हो गया कि नहीं। इसलिए ज्ञान नित्य मुक्त का ज्ञान, नित्य मुक्ति का ज्ञान होता है। तो यहां पर भी कहते हैं ये जो आत्मा अधिष्ठान तत्व है इसकी संततो भाव, इसकी सत्ता कभी भी ये नहीं जाती है। अरे ये आत्मा क्या किया है व्यवहार के समय, तीन तीन कमरे को बनाकर रखा है, तीन कमरे है? कोई व्यक्ति मान लो तीन कमरे बनाया हो, और एक कमरे में क्या करता है कि व्यवहार करता है, अपना व्यापार चलाता है, लोगों से मिलता है, और दूसरा एक कमरा बना रखा है अंतरंग कमरा, अंतरंग वहां पर सबको नहीं आने देता है, अपना हिसाब किताब अकाउंट कर काम करता है। तो दिन में जितना काम हुआ है, कितना माल आया, कितना गया, कितना मुनाफा हुआ, इसका सब हिसाब किताब जो है वो अंतरंग कमरे में करता है ना। और तीसरा एक कमरा बना रखा है, वहां पर जाकर खा पी कर सो जाता है, सबसे निवृत्त होकर के सो जाता है ना। तो इसी प्रकार ये आत्मा है, ये तो जागृत बनाकर रखा है जागृत में खा रहा है, पी रहा है, व्यवहार करता है, सब कुछ करता है। और जागृत का जो भोग समाप्त हो जाता है, जागृत में जो फोटो खींच कर रखा है ना इंद्रियों से, इंद्रियों का फोटो मन में रखा है कि नहीं संस्कार, तो इंद्रियों के द्वारा होने वाला जो मन में जो संस्कार है, उस संस्कार से संस्कृत मन के द्वारा इस स्वप्न में वो देखता रहता है, मिलाता है। देखो हम जागृत में क्या क्या किए हैं पाप पुण्य के आधार पर, आप जैसा चाहेंगे ऐसा सपना नहीं देख सकते, है कि नहीं भाई? सपना कोई बुरा देखूं ये कोई भी नहीं चाहता है ना, क्यों नहीं चाहता है? चाहना पर भी क्यों नहीं होता है ना? हम अच्छा सपना देखूं, बुरा सपना नहीं देखूं, हर कोई चाहता है, चाहने पर ही बुरा सपना ही क्यों देखता है भाई? इसका मतलब पाप पुण्य है। जो कर्म फल देने के लिए तैयार होगा तद अनुसार ही आपको सपना होगा, उससे विपरीत सपना नहीं होगा। तो ऐसा जानने वाला कौन होगा भाई? इस व्यक्ति को अभी यही कर्म का फल देना है, हाँ, ऐसा जानने वाला कौन होगा? परमात्मा है कि नहीं? ये देखो परमात्मा प्रत्यक्ष है, देखो परोक्ष कहाँ है बताओ? आप विचार कर देख लो, इस प्रकार विचार करेंगे तो परमात्मा कैसा है? प्रत्यक्ष है। तो कर्मों को जानने वाला परमात्मा जरूर है। परमात्मा यदि नहीं होता, ये कर्मों की जो नियत व्यवस्था है, नियत व्यवस्था कैसे हो रही है फिर, है ना? तो पाप पुण्य के सहकृत और जागृत कालीन भोगजन्य संस्कार से संस्कृत मन के द्वारा इस सपनावस्था रूपी द्वितीय गृह में, घर में वो देखता रहता और वहां पर भी थक जाता है जी। चाहे जागृत काल में मन का व्यापार हो, चाहे स्वप्न काल में मन का व्यापार हो, और व्यापार होने मात्र ही श्रम होता है, श्रम थकावट है। और जागृत में क्या हो रहा है कि इंद्रियों के साथ साथ मन का व्यापार हो रहा है ना? और स्वप्न में क्या हो रहा है? केवल मन का व्यापार है, इंद्रियों का व्यापार नहीं होता है ना? ये मन ही इंद्रियां बन जाएगा, ये मन ही लड्डू बन जाएगा, मन ही पात्र बन जाएगा, ये सब बन जाएगा। कभी कभी तो स्वप्न में ऐसा हो जाता है, मान लीजिए आपने हाथ से उठाया बड़ा पाव और खाते खाते में रसगुल्ला भी हो जाता है, है कि नहीं भाई? मन में ऐसी सामर्थ्य है क्या? क्या जी, मन का स्वभाव ही ऐसा है ना? तो पाप पुण्य के आधार पर मन का ऐसा स्वभाव बन जाता है। तो मन में भी श्रम हो रहा है, देखो सपना अवस्था में भी मन में श्रम होता है। तो इस श्रम को दूर करने के लिए सुसुप्ति में चला जाता है, देखो सब छोड़ देता है, ना जागृत का व्यवहार हो रहा है, ना स्वप्न का व्यवहार है, समस्त व्यवहार से निवृत्त होकर के सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है। ये असली घर है, देखो सुसुप्ति जो है ना असली घर है, देखो यहाँ हर कोई जाना चाहता है ना? लेकिन परमात्मा के साथ एकीभूत तो होता है, लेकिन जानता नहीं ना। कोई वस्तु अपने पास होने से क्या मतलब? यदि उसकी पहचान ना हो तो, मान लीजिए किसी के घर में पारस मणि का पत्थर हो और यही पारस मणि है ना, इससे यही होता है, लोहा भी सोना बन जाता है, ऐसा यदि ज्ञान यदि ना हो तो आप क्या करेंगे? हैं? जीवन भर चटनी पीसेंगे और क्या करेंगे? है कि नहीं भाई? धनिया की चटनी, पुदीना की चटनी पीसता रहेगा और क्या करेगा? हाँ, इस पर अगर हम लोग चटनी ही पीस रहे हैं और क्या है, विचार करके देखिए, है ना? अपना स्वरूप ही परमात्मा है और परमात्मा के साथ रोज एकीभूत होते हैं। एकीभूत होने पर भी ज्ञान नहीं हो पाता है ना, ज्ञान कौन कराएगा? वहां पर कोई कराने वाला ही नहीं है, ना कराने वाला है, ना करने का साधन है सुसुप्ति में, हो गया ना? तो जो भी करना है जागृत में ही करना है। तो ये जो इस प्रकार जब विचार करेंगे तो तो ये जो तीन प्रकार का जो कमरा है ना, ये सुषुप्ति अवस्था, सपना अवस्था, जागृत अवस्था, देखो ये विचार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साधन हो जाएगा, तो वो साधन हो जाएगा है ना। इसलिए साधकों के लिए परमात्मा ने अनुग्रह किया, देखो तीन प्रकार की अवस्था बना करके। इसलिए मांडव के में आप लोग सुने होंगे ये तीनों को क्या कहा, पात कहा, पात कहा कि नहीं भाई, अयम आत्मा चतुष्पात, ये जो आत्मा जो है ना चार पाद वाला, चार पाद। बोले कि आत्मा का तो कोई पाद नहीं, चार पाद कहां से आ गया है ना। तो ये जो जागृत अवस्था विश्व, सपना अवस्था ये माने जो तेजस, और सुषुप्ति अवस्था प्राज्ञ, ये तीन जो है ना प्राज्ञ बेष्टि में, तो इसको तीन को पाद कह दिया। साधन होने से पाद है, देखो विचार करेंगे तो ये साधन हो जाएगा, नहीं तो जीवन भर ऐसा ही जाएगा है कि नहीं। सपना अवस्था यदि नहीं होती, जागृत में आप विचार कैसे करेंगे, हो गया ना। तो जागृत में जो भी दिखाई दे रहा है ये मिथ्या है, निश्चय कैसे करेंगे आप, दृष्टांत के बिना निश्चय नहीं होता है ना। ये सारा का सारा जगत, जगत मिथ्या, दृश्यत्वाद, परिच्छिन्नत्वाद, करते कि नहीं विचार क्या, सपनावत। सपनों यदि नहीं होता तो साधक ये निश्चय नहीं कर सकता है, देखो कि सारा का सारा जगत कैसा है, दिखाई देने पर भी ये वास्तविक नहीं, मिथ्या है, हो गया ना। और सुषुप्ति यदि नहीं होती, सुषुप्ति का निर्माण भी परमात्मा ने न किया होता, तो ये निश्चय नहीं हो पाता कि बिना विषय से भी सुख होता है। सुषुप्ति में कौन सा विषय है, ये कोई विषय नहीं है, तो बिना विषय से भी सुख होता है कि नहीं, ये तार्किक लोग नहीं मानते, देखो पर बिना विषय से कैसे सुख होगा, विचार कर देखो होता है। सुषुप्ति में जाते हैं तो कोई भी विषय नहीं, देखो कोई भी विषय नहीं है फिर भी सुख, वो है आत्मा का सुख, देखो आत्मा सम प्रकाश है, इसका निश्चय जो स्वप्न न होता तो निश्चय नहीं हो, देखो आत्मा अभी आएगा, आत्मा सम प्रकाश है, इसका निश्चय जागृत में जल्दी नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है भाई, सूर्य का प्रकाश है, देखो हेलोजन का प्रकाश है, इस प्रकाश से दिख रही है पुस्तक, आत्म प्रकाश से पुस्तक दिख रही है, ऐसा निश्चय नहीं होता है। लेकिन स्वप्न में जाएंगे वहां पर कौन सा प्रकाश है भाई, ना सूर्य का प्रकाश है, ना बल्ब का प्रकाश है, ना कोई प्रकाश नहीं है, फिर भी मालूम पड़ता है आत्मा का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश से सारा सपना दिखाई देता है। और जागृत में भी ऐसा विचार करना चाहिए सपनों के आधार पर, भाई आपने संकल्प किया, देखो थोड़ा सा संकल्प हुआ आंख बंद करके है ना, थोड़ा सा संकल्प भैया हुआ फिर भी स्फुरित कैसे हो जाता है, किस प्रकार से हुआ, आंख बंद करने पर ना सूर्य का प्रकाश है, ना बल्ब का प्रकाश है, कोई भी बाह्य प्रकाश नहीं है, फिर भी ज्ञान हो जाता है संकल्प का है ना। अनुकूल वस्तु होने पर शांत मन को भी आप जानते हैं, प्रतिकूल वस्तु होने पर अशांत मन को भी आप जानते हैं, देखो तो आत्म प्रकाश से हो गया। तो ये जो तीनों अवस्था है, तीनों अवस्था है, जैसे तीन कमरे से व्यक्ति यदि अलग नहीं होता, भाई बारी बारी से कैसे जाता फिर कमरों में, इसी प्रकार इस तीनों अवस्था से, तीनों अवस्था में होने वाला समस्त व्यवहार से यदि आत्मा अलग नहीं होता है ना, फिर बारी बारी से कैसे जाएगा। ये तीनों अवस्था, तीनों अवस्था में होने वाले व्यवहार आने जाने वाले हैं, आत्मा आने जाने वाला नहीं है। तो ऐसा जो आत्मा तत्व है उसका साक्षात्कार वही कर सकता है जो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, व्यवहार करते समय भी अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब ये नहीं समझना है कि आंख बंद कर लिया तो अंतर्मुखी है ना, ये वेदांत की साधना नहीं है, देखो ये जोगियों की साधना है, ये आंख बड़ा बंद करके ध्यान लगाना ये जोगियों की साधना है, वेदांत की साधना ये नहीं है। व्यवहार करते समय भी आत्म तत्व का ज्ञान करना है ना। तो वही कर सकता है जो अंतर्मुखी हो। अंतर्मुख का मतलब कोई धीर होता हो, कोई धीर होता हो और आवृत चक्षु होता हो साधन अवस्था में और अमृत तत्व की तीव्र इच्छा करता हो, तो अंतर्मुखी होकर के प्रत्येक आत्मानम इच्छत, प्रत्येक आत्मा का साक्षात्कार करता है। तो ये तो साधन बता दिया जी। लेकिन जो व्यक्ति अंतर्मुखी नहीं होता है वो जाल में ही फंसेगा, अनंत काल से फंसते आ रहा है, आगे भी फंसता जाएगा। इसलिए आगे का मंत्र इस बात को बतलाता है। देखिए जी, द्वितीय मंत्र में पराच कामान अनुयंति बालास ते मृत्युर्यन्ति विदितस्य पाशम अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेषु इह न प्रार्थयन्ते। देखो जी, बालक बोल दिया, बालक श्रुति क्या बोल रही है, बाला हा, बाला मतलब बालक है ना, बालक कैसे बोल दिया, हम इतने बड़े बड़े हो गए श्रुति बालक कैसे बोल दिया। व्यक्ति को बालक कहते ना क्रोध हो जाता है ना, गुस्सा आ जाता है। श्रुति सबको कह रहे भैया, हाँ यहाँ पर कोई अवस्था की बात नहीं है यहाँ पर, हाँ तो बालक क्यों कहा फिर। बालक इसलिए कहा, जैसे मान लो बालक जीवन भर देखो बाल्यावस्था में खेलने कूदने में ही मन लगा देता है, माता पिता इतना समझाते हैं भाई स्कूल जाओ पढ़े मन लगाओ, ये सुनता ही नहीं है। हाँ, तो मन का रस जहां से मिल रहा है उसी में लगा रहता है बालक। मान लीजिए कोई बालक घर से तो निकलता है पढ़ने के लिए, खेलने के लिए चला जाता है, आ दो दिन तक नहीं गया विद्यालय में, तीसरे दिन गया, मास्टर ने पूछा भी कि दो दिन तक क्यों नहीं आए, तो बालक ने उत्तर दिया कि मैं बीमार हूं। आप जानते हैं ना मैं बीमार हूं भाई, कौन सी बीमारी है, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना। तो बालक ने कहा कि मुझे पथरी का बीमार, पथरी 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 जानते हैं ना, हार्ट स्टोन पेट में होता है। तो मास्टर जी को संशय हुआ, भाई इतना छोटा सा बालक इसको पथरी कैसे हुआ, बता पथरी कहां पर हुआ, कुछ तो बताना चाहिए ना। पथरी होता है इतना मालूम है बालक को, लेकिन कहां पर होता है ये मालूम नहीं है, तो कुछ तो बोलना चाहिए, मेरे पैर में हुआ है, पैर में है ना, ऐसा हो जाता है। तो बालक का मन जैसे खेलने कूदने में ही लगता है, पढ़ाई के हित की बात बोलने पर भी नहीं सुनता है, देखो है ना। इस वक्त हम भी तो ऐसा है और क्या है। तो मन का रस जहां से मिल रहा है बस उसी में ही लगा रहते हैं जीवन भर। तो बालक और अज्ञानी में क्या अंतर, कोई अंतर नहीं है। इसलिए साधन के महत्व को, श्रवण आदि मन, श्रवण मन निध्यासन के महत्व को, जिसने हमारा प्राण को चला रहा है शरीर को चला रहा है उसका मैं ध्यान करूं प्रातः काल में कम से कम, इसी में हमारा हित है ना। माता पिता जैसे उसको बहुत समझाते हैं फिर भी सुनता ही नहीं है, तो माता पिता जैसे सोचते हैं परमात्मा भी ऐसे ही सोचते हैं और क्या। देखो इसको हमने कितना उपदेश किया, देखो उपनिषद, यहाँ उपनिषद में उपदेश किया भाई, गीता में किया, भागवत में किया, देवी भागवत में किया, इसको कितने उपदेश देते हैं फिर भी सुनता ही नहीं। देखो मार भी खाता है जैसे माता पिता मारते हैं कि नहीं, ये भी मार खाता है अज्ञानी है। तो जीवन भर आपने जिससे मोह किया, जिस पुत्र से मोह किया, प्रीति किया, वही पुत्र बड़ा होकर के डांट देगा माता पिता, चुप रहो आपको कुछ नहीं आता है। तो पूजा पाठ में लगे रहते हो, विज्ञान कहां तक चला गया देखो, आप उसी में लगे रहते हो, है ना, तो जीवन भर आपने जिसके प्रति मोह किया वही आपको डांट देगा, देखो आप नाराज हो जाएंगे, ये मारते घर क्या है। हाँ, रोज संसार से अपमानित होते हैं, है ना, निंदित होते हैं, फिर भी हम समझते नहीं, देखो साधन के महत्व को नहीं समझते हैं। इसलिए बालक और अज्ञानी में कोई अंतर नहीं, देखो हो गया ना। इसलिए श्रुति बोलती है ये जो जितने भी अज्ञानी है बहिर्मुखी ये सब कैसे हैं, बालक है बालक। इसलिए बालक क्या करता है, जैसे मन जहां से रस खींच रहा है उसी में लगा रहता है, उसी प्रकार अज्ञानी रूपी जो बालक है पराचह कामान, बाह्य जो काम्यमान वस्तु है उसके पीछे पीछे बस लगा रहता है। और जहां पर आत्मा से बाहर जो अनात्मा जितने भी है उसमें पराधीनता है, ये बाह्य पदार्थ पराधीन करता है, पराधीन करेगा, है ना भाई, किसके प्रति इच्छा हो गई वो वस्तु के उठा कर ले जाएगा, कोई चुरा कर ले जाएगा, नहीं तो गिर जाएगा, टूट जाएगा। देखो कोई बढ़िया शीशे का पदार्थ अपना सजा कर रखा है, आपको गिरा देगा, आप दुखी हो गए कि नहीं, है ना। इसलिए बाह्य पदार्थ में पराधीनता है, लेकिन वो अंदर के पदार्थ में पराधीनता नहीं, देखो हाँ। परमात्मा का आप ध्यान करते हैं अपने स्वरूप में, इसको कौन छीनेगा बताओ, कोई छीन नहीं सकता इसको। इसलिए श्रुति बोलते हैं पराचक कामान जो बाह्य पदार्थ है उसके पीछे पीछे हाँ ये बालक भोग में लगा रहता है, भोग में लगा रहता है। और ये भोग ऐसा नहीं, ये भोग में फंसाने के लिए है ना, ये माया जो है जाल बिछा रखा है, जाल बिछा रखा हो गया ना। ये तो कैसे जाल बिछा रखा है, या तो समय हो गया, कल विचार करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।